महाबंध पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर एक. ओम नमः सिद्धेभ्य. ओम नमः सिद्धेभ्य. ओम नमः सिद्धेभ्य. ओम शुद्धात्मने नमः. नमो अरिहंताणं. नमो सिद्धाणं. नमो आयरियाणं. नमो वंचायाणं. नमो लोए सौवसाहूणं. बारहंगगिच्छा वियलियमलमूढदंसनुत्तिलया विविहवर चरणभूषा पश्यौ सुयदेवया सुईरम् जयौ धरसेनाहो जेन महाकम्मपयणि पाहुरसेलो बुद्धिशिरेणुद्धरियो समप्रियो कुह्वयन्तस्स पणमहकय भूय बलिम् यबलिं केशवास परिभूय बलिं विनिहय बम्महपसरं वड्ढाविय विमलनान बम्महपसरं भूतबलि प्रणितं तं पन्दत्तत्वप्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्. सिद्धानां कीर्तनादन्ते यः सिद्धान्त प्रसिद्धवाक् सोनाद्यनन्त सन्तानः सिद्धान्तो नावताचरिचम् जिनवयनमोऽसहमिणं विषयसुभविरेयणम् अमिदभूयं जरमरणबाहिरहरम् यहाँ एक नंबर की गाथा पढ़ेंगे. सिद्धा दत्तमला विशुद्ध बुद्धि अलद सौवत्था तिवण शिरसे हरया पश्यन्तु भणारया सौवे. यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का महाधवल सिद्धांत शास्त्र है और आज से इन ग्रंथों की यहाँ अपना स्वाध्याय आरंभ हो रहा है. यह बहुत परम सौभाग्य की बात है. अपनी धवला के 16 जय धवला के 16 ग्रंथों का अपना स्वाध्याय हो चुका है कल तक और आज से ये हम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ जो इसका नाम है महाबंध और उसका नाम है प्रथम प्रकृति बंधाधिकार पहले पुस्तक का नाम है. अब यहाँ हम शुरुआत करते हैं. शुरू से ही हम देखेंगे ये मूर्ति देवी जैन ग्रंथमाला से ये प्रकाशित हुआ है और सुमेरु चंद्र दिवाकर ने ये इसका संपादन और अनुवाद किया हुआ है. वो क्या लिखते हैं समर्पण में वहां से हम पढ़ेंगे क्योंकि ग्रंथ पढ़ने से पहले कितने लोगों ने उसके पीछे कितना अपना क्या क्या योगदान दिया है वो ग्रंथ की क्या गरिमा है क्या महत्व है ये ख्याल में आ जाएगा अपने. क्योंकि हमारे तो हाथ में आज प्रिंटेड कॉपी है. एक काल ऐसा था कि उसके दर्शन तक महादुर्लभ थे. तो हम देखेंगे क्या 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 उन लोगों ने किया है. तो ये सुमेरु चंद्र दिवाकर यहाँ समर्पण करते हैं ग्रंथ के आदि में. आचार्य शांति सागर महाराज को ये उनके स्मृति में ये लिखा है. उन्होंने उन्हीं को समर्पण किया है जिन्होंने समीचीन श्रद्धा आत्मविज्ञान और दुर्धर सकल संयम से समलंकृत हो विषयासक्त विश्व को अपने विमल जीवन द्वारा आदर्श दिगंबर श्रमणचर्या का दर्शन कराया. श्रमणचर्या ने श्रमण का जो जीवन कैसे होता है ये उन्होंने दर्शाया. शांति सागर महाराज हो गए हैं और उनके बारे में ये बात लिखी है. जिन्होंने अपने आत्मतेज और प्रशस्त अध्यवसाय द्वारा भव्यात्मा उनके अंतःकरण में रत्नत्रय की दिव्य ज्योति प्रदीप्त करते हुए उन्हें श्रेयो मार्ग में संलग्न कराया। श्रेयो मार्ग ने मोक्ष मार्ग, श्रेय का मार्ग, कल्याण का मार्ग उसमें उन्होंने जोड़ दिया है। जिन्होंने परम पूज्य महाबंधादि आगम ग्रंथों के संरक्षण हेतु, यानी वो धवल, जयधवल, महाधवल सभी ग्रंथों के संरक्षण हो इसलिए उन्हें ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण कराया। तांबे के बड़े बड़े ऐसे पन्नों पर ये पूरा उत्कीर्ण किया हुआ है ग्रंथ। फल्टन नाम का गांव है, वहां ये सब मंदिर में ये रखा हुआ है बहुत अच्छी तरह से, हिफाजत से। जिनवाणी की चिरस्मरणीय सेवा की तथा जनसाधारण में सम्यक ज्ञान के प्रसार हेतु उपयोगी ग्रंथों को मुद्रित करवाकर अमूल्य वितरण कराया। जिन्होंने अपने नेत्रों की ज्योति मंद होने पर अहिंसा महाव्रत के रक्षणार्थ वैयावृत्य रहित इंगिनी मरण रूप उच्च संलेखना को धारण कर इस दुष्मा काल में 36 दिवस पर्यंत आहार त्याग कर परम शांतिपूर्वक आदर्श समाधि मरण किया। मेरे ख्याल से 1956 की बात होगी, मैं 6th में थी तभी की बात है, तभी उन्होंने ये संलेखना ली। कुंतलगिरी नाम का गांव है अपना क्षेत्र, वहां पर ये हुआ, सिद्ध क्षेत्र है। जिनकी उच्च तपस साधना तथा अपूर्व आत्म तेज से शरीर पर लिपटने वाले भीषण सर्पराज भी बाधाकारी न हुए तथा व्याघ्र आदि क्रूर वन्य पशु जिनके पार्श्व में आकर प्रशांत बने, ऐसे उनकी बहुत सारी यानी कथाएं भी है, उनके फोटोज भी देखे, पूरे शरीर पर चींटियां यानी बड़े बड़े ऐसे जिसको भी मुंगड़े मन तो अपन पूरे मकोड़े या सर्प भी आकर उनके लिपटे रहे, फिर भी उनका बहुत जिसको कहते हैं कभी उन्होंने वो उपसर्ग से डरे नहीं। उन भय विमुक्त आध्यात्मिक चूड़ामणि चारित्र चक्रवर्ती साधु रत्न 108 आचार्य श्री शांति जागर महाराज की पावन स्मृति में ये सुमेरु चंद्र दिवाकर ने लिखा है। प्रकाश किए को टालकर हम आगे देखते हैं, चलो उसी को भी पढ़ेंगे। प्रकाश किए प्राचीन जैन ग्रंथों की शोध खोज संपादन प्रकाशन तथा आधुनिक लोकोपयोगी धार्मिक साहित्यिक ऐतिहासिक सुरुचिपूर्ण भव्य साहित्य के निर्माण और प्रकाशन की भावनाओं से प्रेरित होकर सेठ शांति प्रसाद जी और उनकी सहधर्मचारिणी श्रीमती रमा रानी जी ने फाल्गुन कृष्ण नव विक्रम संवत 2000 शुक्रवार 18 फरवरी 1944 को बनारस में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की, जिन्होंने ये इसको प्रकाशित किया है। उनकी धर्मनिष्ठ स्नेहमयी स्वर्गीय माता मूर्ति देवी की अभिलाषा जैन सिद्धांत ग्रंथों विशेषकर जयधवल महाधवल के उद्धार की थी, अतः उनकी अभिलाषा की पूर्ति स्वरूप उनकी पवित्र स्मृति में ज्ञानपीठ से एक मूर्ति देवी जैन ग्रंथमाला प्रकाशित की जा रही है। ज्ञानपीठ की स्थापना को 3-4 मास ही हुए थे कि पंडित सुमेरु चंद्र दिवाकर ने स्वसंपादित प्रस्तुत ग्रंथराज प्रथम खंड को ज्ञानपीठ से प्रकाशित करने की अभिलाषा प्रकट की। ज्ञानपीठ ये उसका प्रकाशन एडिटर संस्था है बड़ी, भारतीय ज्ञानपीठ उसका नाम है, वहां से अपने सारे जैन ग्रंथ आदि छपे हैं। अन्य भी अन्य भाषाओं के भी छपते हैं ना भारतीय ज्ञानपीठ से सभी, यानी अन्य साहित्य भी छपता है वहां से। माता जी की अभिलाषा पूर्ति स्वरूप जयधवल का प्रकाशन जैन संघ के तत्वावधान में प्रारंभ हो चुका था। ये जो हमने जयधवल की बात देखी ना, मथुरा से वो छपता है, अतः महाधवल को ज्ञानपीठ से प्रकाशित करना तुरंत निश्चय कर लिया गया और वीर शासन जयंती की शुभ बेला में प्रेस में दे दिया। परम संतोष की बात है कि 3 वर्ष पश्चात श्रुत पंचमी के पुण्य दिवस पर उत्सुक और भक्ति विभोर जनता को उसके पूजन का अवसर मिल रहा है। हमारी अभिलाषा इसे शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करने की थी पर प्रेस आदि की कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं हो सका। उनके लिए भी 3 साल बीत गए। दिवाकर जी ने अनेक विघ्न बाधाओं को पार करके जिस साहस और अदम्य उत्साह से यह अलभ्य ग्रंथ प्राप्त किया, उतनी ही लगन और परिश्रम से इसका संपादन किया है। ग्रंथराज की उपलब्धि, अनुवाद और संपादन आदि सब कुछ आत्मकल्याण की पवित्र भावना से किया है और इसी भाव से ज्ञानपीठ को प्रकाशन के लिए भेंट कर दिया है। जिनवानी के उद्धार की दिवाकर जी की यह निष्प्रो भावना और लगन अनुकरणीय और अभिनंदनीय है। हम उन धर्म प्रेमी महाशयों का विशेषता मूडबद्री के पूज्य भट्टारक जी का स्मरण करके आत्मविभार हो उठते हैं, जिन्होंने घोर संकट काल में जबकि शास्त्रों को जला जला कर स्नान के लिए पानी गर्म किया जाता था, मंदिर विध्वंस किए जाते थे, प्राणों से लगाकर इस ग्रंथ रत्न की रक्षा की और उपयुक्त समय आने पर उनके उत्तराधिकारियों ने भगवंत भूतबलि की यह धरोहर समाज के कल्याण अर्थ सौंप दी। साउथ में बहुत बड़े उपसर्ग होते थे, मुनियों पर भी ग्रंथों पर भी, बताए ना यहाँ। समाज उन सभी बंधुओं का आभारी है जिन्होंने इस ग्रंथराज की गोपनीय भंडार से उपलब्धि और प्रतिलिपि कराने में एक क्षण के लिए भी सहयोग दिया है अथवा प्रयत्न किया है। वे महानुभव भी कम आदर के पात्र नहीं जिन्होंने ग्रंथ की प्राप्ति में विघ्न नहीं डाला, क्योंकि बने बनाए शुभ कार्य तनिक से विघ्न से छिन्न छिन्न होते देखे गए हैं। पंडित परमानंद जी साहित्याचार्य और पंडित कुंदनलाल जी शास्त्री के हम विशेषता आभारी है जिन्होंने उक्त ग्रंथ के संपूर्ण आद्य अनुवाद में दिवाकर जी को नींव की ईट की तरह सहयोग देकर इस ग्रंथ प्रासाद की जड़ जमाई। ज्ञानपीठ के प्राकृत विभाग के संपादक ख्याति प्राप्त डॉक्टर हीरालाल जी ने इस ग्रंथ का प्रास्ताविक लिखा है और संस्कृत विभाग के संपादक न्यायाचार्य पंडित महेंद्र कुमार जी की देखरेख में मुद्रण और प्रकाशन हुआ है। समस्त प्रूफ उन्होंने देखे हैं। दोनों ही विज्ञान ज्ञानपीठ के विशिष्ट अंग है, उन्हें धन्यवाद देने का हमें अधिकार नहीं है। हम उन सभी बंधुओं के आभारी है जिनकी कृपा या भावनाओं से यह ग्रंथराज प्रकाश में आया है और हमें भी घर बैठे दर्शनों और स्वाध्याय का पुण्य प्राप्त हुआ। ये लिए नहीं लिखा है, अभी आगे देखते हैं। हीरालाल जी जो है ग्रंथमाला के जो संपादक प्रास्ताविक लिखते हैं, जब मैंने षटखंडागम का संपादन प्रारंभ किया था, ये तो धवल जय धवल उनका भी इन्होंने किया है हीरालाल जी ने, तब मेरे मार्ग में अनेक विघ्न बाधाएं उपस्थित थी। तो भी जब उक्त ग्रंथ का प्रथम भाग सन 1939 में प्रकाशित हुआ और लोगों ने उसका आनंद से स्वागत किया, तब मुझे यह आशा हो गई कि कठिनाइयों के होते हुए भी यथासमय तीनों सिद्धांत ग्रंथ प्रकाश में लाए जा सकेंगे। फिर भी मुझे यह भरोसा नहीं था कि मेरी आशा इतने शीघ्र सफल हो सकेगी और साहित्यिक प्रवृत्तियों में संसार युद्ध के कारण अधिकाधिक बाधाओं के उपस्थित होते हुए भी जय धवल का वो विश्व युद्ध हुए थे ना उसकी बात है, जय धवल का प्रथम भाग सन 1944 में तथा महाबंध का प्रथम भाग सन 1947 में ही प्रकाशित हो सकेगा। जैन समाज और उसके विद्वानों के इन सफल प्रयत्नों से भविष्य आशापूर्ण प्रतीत होता है। मैं षटखंडागम के प्रथम भाग की प्रस्तावना में बतला चुका हूं कि धवल और जयधवल सिद्धांतों की प्रतिलिपियां सन 1924 में ही मूडबिद्री के शास्त्र भंडार से बाहर आ गई थी और उसके पश्चात कुछ वर्षों में उनकी प्रतियां उत्तर भारत में उपलब्ध हो गई, किंतु महाधवल नाम से प्रसिद्ध सिद्धांत ग्रंथ फिर भी मूडबिद्री सिद्धांत मंदिर में ही सुरक्षित था। जब मैंने सन 1938-39 में इस सिद्धांत ग्रंथों के अंतर्गत विषयों को जानने का प्रयत्न प्रारंभ किया, तब मुझे जानकर बड़ा विस्मय हुआ, जो कुछ थोड़ा बहुत वृत्तांत महाधवल की प्रति के विषय में प्राप्त हो सका था उसके आधार पर उस प्रति में केवल वीरसेनाचार्य कृत सत्कर्म चूलिका की एक पंजिका मात्र है और महाबंध का वहाँ कुछ पता नहीं चलता। तब मैंने इस विषय पर अपनी आशंका और चिंता को प्रकट करते हुए कुछ लेख प्रकाशित किए और अधिकारियों से इस विषय की प्रेरणा भी की कि वे मूडबिद्री की ताड़पत्रीय प्रति का सावधानी से समीक्षण कराकर महाबंध का पता लगाए। मुझे यह कहते हर्ष होता है, मेरी वह प्रार्थना शीघ्र सफल हुई। मूडबिद्री के भट्टारक जी महाराज ने पंडित लोकनाथ शास्त्री व पंडित नागराज शास्त्री से ताड़पत्रीय प्रति की जाँच कराई और मुझे सूचित किया कि उक्त पंजिका ताड़पत्र 27 पर समाप्त हो गई है एवं आगे के पत्रों पर महाबंध की रचना है। देखिए जैन सिद्धांत भास्कर, ये कोई पत्रिका थी ना मैगजीन, उसमें ये प्रकाशित हुआ था 1940 में। उस प्रकाशित मेरा लेख श्री महाधवल में क्या है एवं षटखंडम भाग 3 1941 की भूमिका पृष्ठ 6-14 में समाविष्ट महाबंध की खोज, इस अन्वेषण से उत्पन्न हुई रुचि बढ़ती गई और शीघ्र ही विशेषता पंडित सुमेर चंद्र जी दिवाकर के सप्रयत्न से दिसंबर 1942 तक महाबंध की प्रतिलिपि भी तैयार हो गई। उन्होंने प्रस्तुत प्रथम भाग का संपादन व अनुवाद कर डाला। उनके इस सत्य कार्य के लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। पंडित जी ने अपनी प्रस्तावना में जो सामग्री उपस्थित की है उसके साथ षटखंडागम के प्रकाशित 7 भागों में मेरे द्वारा लिखी गई भूमिकाओं को पढ़ लेने की मैं पाठकों से प्रेरणा करता हूँ। इससे इन सिद्धांतों के इतिहास व विषय आदि का बहुत कुछ परिचय प्राप्त हो सकेगा। पंडित जी की भूमिका के पृष्ठ 30 पर नमोकार मंत्र के जीवोत्थान के आदि में अनिबद्ध मंगल होने के संबंध का वक्तव्य मुझे बिल्कुल निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि वह प्राचीन पत्तियों के उपलब्ध पाठ एवं आचार्य वीरसेन की टीका की युक्तियों के सर्वथा विरुद्ध है। इस संबंध में षटखंडागम भाग 2 की भूमिका के पृष्ठ 33 आदि पर मेरा नमोकार मंत्र के आदिकर्ता शीर्षक लेख देखें। निबद्ध का अर्थ स्वरचित है, जिसे दिवाकर जी ने स्वयं अपनी भूमिका में स्वीकार किया है। यथा अर्थात सूत्र के आदि में सूत्र रचयिता के द्वारा रचित देवता नमस्कार निबद्ध मंगल है। महाधवल सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध शास्त्र यथार्थता षटखंड नगम का ही महाबंध नामक छठा खंड है, जैसा कि मैं उसके प्रथम भाग की भूमिका में बतला चुका हूँ। वहां मैं इस ग्रंथ के कर्ताओं व समय आदि के संबंध का भी विचार कर चुका हूँ। तब से अभी तक कोई ऐसी नवीन सामग्री प्रकाश में नहीं आई जिसके कारण मुझे अपने उस मत में परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत हो। यद्यपि महाबंध षटखंड नगम का ही एक अंश है और उन्हीं भूतबली आचार्य की रचना है, जिन्होंने पूर्व 5 खंडों के बहुभाग की रचना की है। यहाँ तक कि उसका मंगलाचरण भी पृथक न होकर चतुर्थ खंड वेदना के आदि में उपलब्ध मंगलाचरण से ही संबद्ध है, तथापि यह रचना एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में उपलब्ध होती है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। एक तो यह ग्रंथ पूर्व 5 भागों को मिलाकर भी उनसे बहुत अधिक विशाल है, सभी मिलकर उससे भी यह एक महाबंध बहुत बड़ा है। और दूसरे, उस पर धवलाकार वीरसेनाचार्य की टीका नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी सुविस्तृत रचना पर टीका लिखने की आवश्यकता ही नहीं समझी। इस ग्रंथ का विषय बहुत ही शास्त्रीय है, जिसमें केवल जैन दर्शन के उन्हीं मर्मज्ञों की रुचि हो सकती है जिन्हें कर्म सिद्धांत संबंधी सूक्ष्मतम व्यवस्थाओं की जिज्ञासा हो। साधारण तो हम कर्मकांड में भी पढ़े हैं, जीव कांड भी अपना हो चुका है, धवला जय धवला में भी हमने पढ़ा है, अभी इसमें और सूक्ष्म चर्चा होगी। ज्ञानपीठ मूर्ति देवी जैन ग्रंथमाला के प्राकृत विभाग के संपादक और नियामक के नाते मैं इस अवसर पर श्रीमान साहू शांति प्रसाद जी जैन का अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ जैसी संस्था स्थापित की। ये साहू शांति प्रसाद, ये जो कलकत्ता वाले साहू, हाँ साहू जैन कहते ना, उनकी बात है। वो भारतीय संस्कृति की छिपी हुई निधियों का संसार को परिचय कराने के हेतु अपनी मातुश्री की स्मृति में यह मूर्ति देवी जैन ग्रंथमाला प्रारंभ कराई। मुझे आशा और विश्वास है कि उनकी धर्मपत्नी तथा ज्ञानपीठ की संचालक समिति के अध्यक्ष श्रीमती रमा रानी जी की रुचि तथा संस्था के संचालक न्यायाचार्य पंडित महेंद्र कुमार जी शास्त्री के परिश्रम, अभियोग और उत्साह से संस्था का कार्य उत्तरोत्तर गतिशील होगा। मेरी सब विद्वानों से प्रार्थना है कि वे संस्था के उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करें। आते हैं प्राप कथन पर। ट्वेंटी थ्री नंबर का पेज। जैन वांग्मय में धवल, जय धवल, महाधवल, महाधवल का ही नाम है महाबंध। इन सिद्धांत ग्रंथों का, इनको कहते सिद्धांत ग्रंथ, ये जो कर्णानियोग के ग्रंथ है इनका नाम है सिद्धांत ग्रंथ, अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा पूर्वक नाम स्मरण किया जाता है। ये परम पूज्य शास्त्र मूडबिद्री दक्षिण कर्नाटक के सिद्धांत मंदिर के शस्त्र भंडार को समलंकृत करते हैं। उसको सिद्धांत मंदिर ही कहते वहां पर, वहां का शास्त्र भंडार सिद्धांत तो उसको भी कहते, वो जो सारे वो रत्नमयी मूर्तियां वगैरह रखी ना, उसको सिद्धांत मंदिर कहते उसको। इन ग्रंथ रत्नों के प्रभाव संपूर्ण भारत के जैन बंधु मूडबिद्री को विशेष पूज्य तीर्थस्थल सदृश समझ वहां की वंदना को अपना विशिष्ट सौभाग्य मानते हैं और वहां जाकर इन शास्त्रों के दर्शन मात्र से अपने को कृतार्थ मानते हैं। वो तो उनके तो वो मूल ताड़पत्री पर लिखे हुए ग्रंथ वहां उपलब्ध है और उसके दर्शन करते हैं। जैसे हम तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, वैसे इन ग्रंथों के जाकर दर्शन करते थे। आज तक ऐसी परंपरा चली थी। भगवत भक्त जिस ममत्व श्रद्धा तथा प्रेम भाव से पावापुरी, चंपापुरी, समय शिखर, राजगिरी आदि तीर्थ स्थलों की वंदना करते हैं, प्राय उसी प्रकार की समुज्ज्वल भावनाओं सहित उत्तर भारत के श्रुत भक्त, श्रावक तथा श्राविकाएं दक्षिण भारत के पश्चिम कोण में मंगलोर बंदर के पार्श्ववर्ती मूड़ बिद्री की वंदना करते हैं। उसे वे श्रुत देवता की भूमि सोचते हैं। जिन व्यक्तियों को सिद्धांत ग्रंथों के कारण पूज्य मानी गई मूड़ बिद्री को जाने का सौभाग्य नहीं मिला, वे उक्त स्थल की परोक्ष वंदना करते हुए उस अवसर की बाट जोहा करते हैं कि वे कब वहां पहुंचकर अपने चक्षुओं को सफल कर सके। कहते हैं ये सिद्धांत शास्त्र पहले जैन बद्री श्रवण बेलगुला के मनीय ग्रंथागार को अलंकृत करते थे, पश्चात ये ग्रंथ मूड़ बिद्री पहुंचे। इन ग्रंथों की प्रतिलिपि भारतवर्ष भर में अन्यत्र कहीं भी नहीं थी। इन शास्त्रों का प्रमेय क्या है यह भी किसी को पता नहीं था। बहुत लोग तो यह सोचते कि इन शास्त्रों में आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार सदृश चमत्कारप्रद एवं भौतिक आनंदवर्धक सामग्री निर्माण का वर्णन किया गया होगा। हवाई जहाज, रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, सोना बनाना आदि कुछ इन शास्त्रों में होंगे। इस काल्पनिक महत्ता के कारण साधारण व्यक्ति भी श्रुति देवता को वंदना की सोत्कंठ सन्नद्ध रहते थे। दुर्लभ ग्रंथ दर्शन। ये ग्रंथ अपनी महत्ता, अपूर्वता तथा विशेष पूज्यता के कारण बड़े आदर के साथ निधि अथवा रत्न राशि के समान सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखे जाते थे। जिस प्रकार विशेष भेंट लेकर भक्त गुरु के समीप जाता है, उसी प्रकार वंदक व्यक्ति भी यथाशक्ति उचित द्रव्य अर्पण करके ग्रंथराज की वंदना करता था। शस्त्र भंडार खुलवाने के लिए द्रव्यार्पण आवश्यक था। सिद्धांत मंदिर मूड़ बिद्री के व्यवस्थापक लोग ही शास्त्रों पर अपना स्वत्व समझते थे, उनकी ही कृपा के फलस्वरूप दर्शन हुआ करते थे। शास्त्रों की एकमात्र प्रति पुरानी हड़े कन्नड़ी लिपि में थी। वो कन्नड़ में भी वो पुरानी कन्नड़ थी। अतः उस लिपि से सुपरिचित तथा प्राकृत भाषा का परिज्ञाता हुए बिना ग्रंथ का यथार्थ रस लेने तथा देने वाला कोई भी समर्थ व्यक्ति ज्ञात न था। ग्रंथ को उठाकर दर्शन करा देना और चोरों से या बाधकों से शास्त्रों को बचाना, इतना ही कार्य व्यवस्थापक करते थे। इसका फल यह हुआ कि अत्यंत जीर्ण तथा शिथिल ताड़पत्र पर लिखे ग्रंथों की पुनः प्रतिलिपि कराकर सुरक्षा की ओर ध्यान न गया, जिससे दुर्भाग्यवश महाधवल महाबंध के लगभग 3-4 हजार श्लोक नष्ट हो गए, किंतु इसका पता किसी को भी नहीं हुआ। जैन कुलभूषण श्रावकृंद स्वर्गीय सेठ माणिकचंद जी जेपी बम्बई से सन 1883 वंदनार्थ मूड़ बिद्री पहुंचे। वे एक विचारक दानी श्रीमान थे। शास्त्रों का दर्शन करते समय उनकी भावना हुई कि ग्रंथों को किसी विद्वान से पढ़वा कर सुनना चाहिए, किंतु योग्य अभ्यासी के अभाववश उस समय उनकी कामना पूर्ण न हो पाई। उनके चित्त में यह बात उत्कीर्ण सी हो गई कि किसी भी तरह इन शास्त्रों का उद्धार करके जगत के समक्ष यह निधि अवश्य आनी चाहिए। तीर्थ यात्रा से लौटते हुए सेठ जी ने अपने हृदय की सारी बातें अपने अत्यंत स्नेही सेठ हीराचंद नेमीचंद सोलापुर वालों को सुनाई। सेठ हीराचंद जी के अंतकरण में दक्षिण यात्रा की बलवती इच्छा हुई तथा आगामी वर्ष वे मूड़ बिद्री के लिए रवाना हो गए। ब्रह्मसूरी शास्त्री नामक प्रकांड जैन विद्वान जैन बद्री श्रवण बेलगोला में रहते थे। वे इन शास्त्रों को बांच कर समझा सकते थे। अतः सेठ हीराचंद जी ने उक्त शास्त्री जी को जैन बद्री से अपने साथ ले लिया था। जब ग्रंथों का मंगलाचरण पढ़कर उसका अर्थ सुनाया गया, तब श्रोतृमंडली को इतना आनंद मिला उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, कारण उन्हें साक्षात जिनेन्द्र के वचनामृत के रसपान का सौभाग्य मिला। प्रतिलिपि का संरम्भ। प्रवास से लौटने पर सेठ हीराचंद जी के चित्त में ग्रंथों की प्रतिलिपि कराने की इच्छा हुई, किंतु लौकिक कार्यों में संलग्नता के कारण बहुत समय व्यतीत हो गया। उस जमाने के जीरोक्स नहीं था, कुछ नहीं, हाथ से लिखवाते थे। और ऐसे लिखने वाले हो तो वो भी ऐसे चाहिए ना कि वो सब पढ़कर लिख सके, और मन की बात कृति का रूप धारण न कर सकी। इस बीच में धन कुबेर सेठ नेमीचंद जी सोनी अजमेर पंडित गोपालदास जी बरिया को साथ लेकर तीर्थ यात्रा से निकले और मूड़ बिद्री पहुंचे। उनके प्रभाव तथा सत प्रयत्न से स्थानीय व्यवस्थापक पंचमंडली ने पंडित ब्रह्मसूरी शास्त्री के द्वारा देवनागरी लिपि में प्रतिलिपि कराने की स्वीकृति प्रदान की। अत्यंत मंदगति से कार्य प्रारंभ किया गया और थोड़ी नकल मात्र हो पाई कि अंतराय कर्म ने विघ्न उत्पन्न कर दिया। सेठ हीराचंद जी के प्रयत्न से प्रतिलिपि निमित्त लगभग 14,000 रूपयों की समाज द्वारा सहायता की व्यवस्था हुई। अतः ब्रह्मसूरी शास्त्री के साथ गजपति उपाध्याय महाशय मीरज निवासी के द्वारा पूर्वोक्त स्थगित कार्य पुनः चालू हुआ। कुछ काल व्यतीत होने पर दुर्भाग्य से ब्रह्मसूरी शास्त्री का स्वर्गवास हो गया। अतः पंडित गजपति जी ही कार्य करते रहे। धवला और जयधवला टीकाओं की नकल लगभग 16 वर्षों में पूर्ण हो पाई। इतना समय लगा उसको केवल टीका लिख कॉपी बनाने में। इस बीच में श्री देवराज सेट्टी शांतप्पा उपाध्याय ब्रह्मराज इंद्र ने कन्नड़ी भाषा में एक प्रतिलिपि कर दी, देवनागरी में प्रतिलिपि। देवनागरी ने हमारे जो हिंदी भाषा की जो स्क्रिप्ट है उसको देवनागरी कहते हैं। इधर गजपति उपाध्याय मूड़ बिद्री के सिद्धांत मंदिर में विराजमान करने के लिए देवनागरी लिपि में प्रतिलिपि करते थे। उधर गुप्त रूप से अपनी विदुषी धर्म पत्नी लक्ष्मीबाई के सहयोग से कन्नड़ी में भी एक प्रतिलिपि तैयार कर ली, जिसका किसी को रहस्य अवगत न था। यह प्रति उपाध्याय जी ने विशेष पुरस्कार लेकर परम धर्मीय स्वर्गीय लाला जम्मू प्रसाद जी रईस सहारनपुर को प्रदान की। उन्होंने पंडित विजय चंद्रैया और पंडित सीताराम जी शास्त्री के द्वारा उस कन्नड़ी प्रतिलिपि से देवनागरी में जो प्रतिलिपि लिखवाई उसमें 7 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। पंडित विजय चंद्रैया से कन्नड़ी प्रति बचवा कर सीताराम शास्त्री नकल करते थे। शीघ्र कार्य निमित्त सीताराम जी साधारण कागज पर पहले लिख लेते थे, पीछे लाला जम्मू प्रसाद जी के भंडार के लिए नकल करते थे। सीताराम शास्त्री ने अपने पास के साधारण कागज पर लिखी गई नकल पर से अन्य प्रतिलिपि की, उसके आधार पर अन्य प्रतियां लिखाकर आरा, सागर, सिवनी, दिल्ली, बम्बई, कारंजा, इंदौर, व्यावर, अजमेर, झालरापाटन आदि स्थानों में पहुंचाई गई। इससे जयधवल और धवल शास्त्रों के दर्शन तथा स्वाध्याय का सौभाग्य अनेक व्यक्तियों को प्राप्त होने लगा। महाबंध पर विशेष प्रतिबंध। मूड़ बिद्री वालों को अंधकार में रखकर जिस ढंग से पूर्वोक्त 2 सिद्धांत शास्त्र मूड़ बिद्री से बाहर गए और उनका प्रचार किया गया, उससे मूड़ बिद्री के पंचों के हृदय को बड़ा आघात पहुंचा। मूड़ बिद्री की विभूति के अन्यत्र चले जाने से मूड़ बिद्री के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा, यह बात भी उनके चित्त में अवश्य रही होगी। इस कारण अब उन्होंने महाधवल महाबंध की प्रतिलिपि के विषय में पूर्ण सतर्कता से कार्य लिया। दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, इस कहावत के अनुसार उन्होंने महाबंध को शास्त्र भंडार में इतना अधिक सुरक्षित कर दिया कि भेंट देने वाले व्यक्ति भी महाबंध के स्थान में अनेक बार अन्य शास्त्र का दर्शन कर अपने मन को काल्पनिक संतोष प्रदान करते थे कि हमने भी महाधवल जी आदि की वंदना कर ली। अब जब महाबंध का यथार्थ दर्शन कठिन हो गया तब प्रतिलिपि की उपलब्धि की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सेठ हीराचंद जी के सत्प्रयत्न से महाबंध की देवनागरी प्रतिलिपि का कार्य पंडित लोकनाथ जी शास्त्री मूड़बद्री के ग्रंथागार के लिए करते जाते थे। यह कार्य सन 1918 से 1922 तक चला। इसी बीच में पंडित नेमिराज जी ने इसकी कन्नड़ी प्रतिलिपि भी बना ली। तीनों सिद्धांत ग्रंथों की प्रतिलिपि कराने में लगभग 20,000 रूपये खर्च हुए और 26 वर्ष का लंबा समय लगा। उस काल के 20,000। तीनों ग्रंथों की देवनागरी तथा कन्नड़ी प्रतिलिपि के हो जाने से अब सुरक्षण संबंधी चिंता दूर हो गई। केवल एक ही जटिल समस्या श्रुतभक्त समाज के समक्ष सुलझाने को थी कि महाबंध को बंधन मुक्त करके किस प्रकार उस ज्ञान निधि के द्वारा जगत का कल्याण किया जाए। इस कार्य में महान प्रयत्नशील सेठ माणिकचंद जी बम्बई तथा सेठ हीराचंद जी सोलापुर सफल मनोरथ होने के पूर्व ही स्वर्गीय निधि बन गए। जैन महासभा का उद्योग। दिगंबर जैन महासभा ने इस विषय में एक प्रस्ताव पास करके प्रयत्न किया किंतु वह अरण्य रोदन रहा। अरण्य रोदन समझते, जंगल में जाकर कोई भूख रोया तो कौन सुनेगा उसकी, यानी इस निष्फल होगा। महासभा का एक वार्षिक उत्सव सन 1936 में इंदौर में राव राजा दानवीर सिमन सर शेठ हुकुमचंद जी की जुबली के अवसर पर हुआ। वहां महाबंध के विषय में हमने प्रस्ताव पेश करने का प्रयत्न किया तो महासभा के अनेक अनुभवी व्यक्तियों ने यह कहकर विरोध किया यह अनावश्यक है क्योंकि वह ग्रंथ मूड़ बिद्री की समाज देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। विशेष श्रम करने पर सौभाग्य से पुनः प्रस्ताव पास हुआ और उसमें प्राण प्रतिष्ठा निमित्त एक उपसमिति का निर्माण हुआ। उसके संयोजक जिनवाणी भूषण धर्मवीर से रावजी सखाराम जी दोषी बनाए गए, ये भी सोलापुर के लेखक भी उसका अन्यतम सदस्य था। सेठ रावजी भाई ने 2 बार मूड़ बिद्री का लंबा प्रवास करके एवं 1,000 रूपया भेंट करने का अभिवचन देकर भी सफलता निमित्त प्रयास किया किंतु दुर्भाग्यवश मनोरथ पूर्ण न हो पाया। कुछ ऐसी बातें उत्पन्न होगी जिन्होंने परस्पर के मधुर संबंधों में भी शैथिल्य उत्पन्न कर दिया। महाबंध उपसमिति के समक्ष यहाँ तक विचार आने लगा कि जिनवाणी माता की रक्षा निमित्त व्यक्तिगत अनुनय विनय का मार्ग छोड़कर अब न्यायालय का आश्रय लेना चाहिए। किन्हीं व्यक्तियों के विचित्र ग्रंथों की पूर्ति निमित्त विश्व की अनुपम निधि को अब अधिक समय तक बंधन में नहीं रखा जा सकता। न्यायालय के द्वार खटखटाने के लिए विचार पर हमारी आत्मा ने सहमति नहीं दी। सहसा हृदय में यह भाव उदित हुआ कि अदालत के द्वार पर मूढ़ विद्रोही वालों को घसीट कर कष्ट देना योग्य नहीं है, कारण इनके ही विवेकी धर्मात्मा तथा चतुर पूर्वजों के प्रयत्न और पुरुषार्थ के प्रसाद से यह ग्रंथराज अब तक विद्यमान है और अब भी वे यथामति उनकी सेवा कर ही रहे हैं। उनकी शुद्ध भक्ति तथा सेवा के प्रति कृतज्ञतावश हमारा मस्तक नम्र हो जाता है। यदि हम पुनः उनके सस्नेह अनुरोध करेंगे और अपनी सद्भावनापूर्ण बात समझाएंगे तो वे लोग अवश्य हमारी हृदय की ध्वनि को ध्यान से सुनेंगे। न मालूम क्यों हृदय बार बार यह कहता था, प्रेम पूर्ण प्रयत्न से पथ में ही सफलता है। यह सूक्ति महत्वपूर्ण है। मृदुना हंति अदारुणम न असाध्य मृदुना किंचित तस्मात् क्षीणतरम मृदु। यानी मृदु नरम, उससे ही कार्य सफल होगा। फिर जटिल समस्या। कुछ समय के बाद पुरुषार्थ धर्म विषय रावजी भाई का स्वर्गवास हो गया। इससे आत्मा बहुत व्यथित हुई। हमने सोचा, भगवान अब यह महाबंध की प्राप्ति की अत्यंत कठिन तथा जटिल समस्या कब तक और कैसे सुलझती है। सदैव से ग्रंथराज की प्रतिलिपि प्राप्ति के मार्ग की बाधाओं का अभाव होना तथा अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। नवीन परिस्थिति। सन 1939 की बात है। श्रवण बेलगोला में 1000 भगवान बाहुबली स्वामी की भुवन मोहिनी विश्वातिशायिनी दिव्य मूर्ति के महाभिषेक की पुण्य वेला आई, किंतु मैसूर प्रांत में स्वर्गीय सेठ ML वर्धमानैया सदृश कार्यकुशल प्रभावशाली उदार तथा समर्थ नेता के अभाव होने से आदरणीय भट्टारक्ष श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य पूर्व में जो ब्रह्मचारी नेमिसागर जी वर्णी के रूप में विख्यात थे, यहाँ तो वे चारुकीर्ति नाम से है। वहाँ जो कोई भट्टारक आते हैं उनको चारुकीर्ति कहेंगे। एक के बाद वो चारुकीर्ति कहलाते, वो भट्टारक का नाम ही है वहाँ के। अलग अलग जहाँ है ना, मूढ़ बिद्रे के भट्टारक, वहाँ के भट्टारक, रूमच के भट्टारक, कोई देवेंद्र कीर्ति, कोई चारुकीर्ति, ऐसे अलग अलग है। वो जमाने की चारुकीर्ति है। अभी जो है वो अलग है। वो तो जब हम यात्रा में गए थे 1975 में, तभी नए नए वो चुने गए थे। वहाँ भी उनके कोई जो लायक व्यक्ति उनको बनाया जाता है, नाम वही रहता है। वो भट्टारक की गद्दी का नाम है, इसीलिए उन्होंने पूर्व में लिखा है नेमी सागर जी वर्णी के रूप में विख्यात थे। यानी उनके भी वो पट्टाभिषेक जो कुछ होता है वो रेगुलर वो पल संभालते है उसको। श्रवण बेलगोला तथा उनके सहयोगी महानुभाव अंतरायों की अपरिमित राशि देख सचिंत थे और गोमटेश्वर स्वामी से पुनः पुनः प्रार्थना करते थे, देवाधिदेव आपके चरणों के प्रसाद से यह मंगल कार्य सम्यक प्रकार संपन्न हो, कोई भी विघ्न नहीं आने पाए। उस समय दिगंबर जैन महासभा के मुखपुत्र जैन गजट के संपादक तथा अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन राजनीतिक स्वत्व रक्षक समिति के मंत्री के रूप में हमने यथाशक्ति महाभिषेक की सफलता निमित्त पत्र द्वारा आंदोलन किया। यानी वो तो महाभिषेक के लिए ऐसी प्रार्थना चलती थी कि बिल्कुल निर्विघ्न समाप्त हो, तो इनके जो जैन गजट पत्रिका चलती थी उसमें इन्होंने लोगों को अपील की। विघ्नकारियों का तीव्र प्रतिवाद किया तथा मैसूर राज्य के दीवान सर मिर्जा स्माइल आदि उच्च अधिकारियों से पत्र व्यवहार द्वारा अनुरोध किया। उस समय हमारे लेखों आदि का कन्नड़ी अनुवाद मैसूर राज्य के आस्थान महाविद्वान पंडित शांतिराजी शास्त्री के कन्नड़ी पत्र विवेकाभ्युदय में छपता था। इस कारण कर्नाटक प्रांतीय जैन बंधुओं से हमारा आंतरिक स्नेह संबंध सहज ही स्थापित हो गया। यही स्नेह आगे सफलता में प्रमुख हेतु बना। महाभिषेक महोत्सव का पुण्य अवसर आया। लाखों वंदक विश्व वंदनीय विभूति की वंदना द्वारा जीवन सफल करने के लिए भारतवर्ष के कोने कोने से आए उस महाभिषेक के अपूर्व तथा दिव्य समारोह का कौन भूल सकता है। बड़े सौभाग्य से हम भी अपने पूज्य पिता श्री सिंघई कुंवर सेन जी आदि के साथ वहां पहुंचे। जब भट्टारक जी से मिलने गए तब उनके समीप उस प्रांत के प्रमुख जैन बंधु बैठे हुए थे। वहां स्वामी जी ने भट्टारक महाराज का बड़ा प्रभाव तथा सम्मान है। मैसूर महाराज भी उनकी प्रति प्रतिष्ठा करते हैं, उनको वहां स्वामी जी कहते हैं। हमारे प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्रकट किया। उन्होंने बड़े गौरवपूर्ण शब्दों द्वारा लोगों को हमारा परिचय देते हुए इस महाभिषेक को संपन्न कराने का विशेष श्रेय हमें प्रदान किया। हम चकित हो गए, महाराज से कहा, हमने क्या कार्य किया जिसका आप इतना उल्लेख कर रहे हैं? हमारा इतना पुण्य नहीं है। गोमटेश्वर स्वामी के चरणों के प्रति भक्तिवश कुछ सेवा बन गई, उसे अधिक मूल्यवान बताना आपकी ही महत्ता है। स्वामी जी ने अपनी कर्नाटक की ध्वनि टोन में कहा, क्या आपकी स्तुति करके हमें कुछ प्राप्त करना है जो हम यहाँ अतिशयोक्ति पूर्वक बात कहते? हमें चुप होना पड़ा। वहां से चलते समय स्वामी जी के हृदय से मंगल आशीर्वाद दिया। स्वामी जी ने हृदय से मंगल आशीर्वाद दिया और फले न फलम आलभेत, आलभेत यानी प्राप्त हो, इन फलों के द्वारा तुम्हें महाफल मिले कहते हुए कुछ पक्व फल हमें दिए, यानी आशीर्वाद के रूप में हाथ में कुछ फल रखे। वह पर्व का दिन था। हमारे हाथों में फलों को देखकर एक शास्त्री जी ने व्यंग में कहा, क्या अंग्रेजी की शिक्षा ने आपकी प्रवृत्ति बदल तो नहीं दी? हमने भट्टारक जी से फल प्राप्ति की बात सुनाई तो वे बोल उठे, आप खूब मिले, और लोग तो भट्टारक जी को फल चढ़ाते हैं, भेंट देते हैं, और भट्टारक जी आपको देते हैं। हंसते हुए हम अपने स्थान पर आ गए। समझते है, यानी पर्व का दिन था, यानी उपवास थे और हाथ में फल, तो क्या अभी अंग्रेजी पढ़कर आपने ये भी चालू कर दिया क्या? इसे महाभिषेक बड़े वैभव और अपूर्ण आनंद संपन्न हुआ। अभिषेक के कलशों की बोली से प्राप्त रकम मैसूर स्टेट अधिकारियों के पास जमा हो गई, किंतु बहुत से धर्मबंधु अपने धन को अपने ही अधिकार में रखने की बात सोचते थे। अर्थव्यवस्था निमित्त राव राजा श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी के स्थान पर एक बैठक हुई। उसने कर्नाटक प्रांत के महान प्रभावशाली व्यक्ति श्री डी मंजैया हेगड़े बीए धर्मस्थल तथा उस प्रांत के विशेष श्रीमंत राजवंशीय श्री रघुचंद्र बल्लाल मैंगलोर में शामिल हुए थे। वह मीटिंग उक्त दोनों महाभावों के साथ हमारे स्निग्ध संबंधों के स्थापन तथा संवर्धन में कारण बने। यहाँ एक लिख देना उचित होगा कि महाबंध के व्यवस्थापकों में उन लोगों का प्रमुख स्थान था, इसलिए उनके साथ का परिचय तथा मैत्री संबंध भावी सफलता के मार्ग के लिए अनुकूलता को सूचित करते थे। महाभिषेक महोत्सव पूर्ण होने के पश्चात मूड बिद्री कारकल आदि की वंदना निमित्त हम पिताजी के साथ मैंगलोर पहुंचे। वह माननीय श्री बल्लाल महाशय से अकस्मात भेंट हो गई। प्रसंगवश हमने उनसे कहा, पहले तो आपके बल्लाल वंश ने दक्षिण भारत में राज किया था, आपको भी उस वंश की प्रतिष्ठा के अनुरूप अपूर्व कार्य करना चाहिए। देखिए, आपके यहाँ मुड़बिद्री के शास्त्र भंडार में संसार के अपूर्व विभूति महाबंध शास्त्र है, इसका उद्धार कार्य करने के विश्व आपका आभार मानेगा। इसके अनंतर कुछ और भी धार्मिक बातें हुई, शायद वे उन्हें पसंद आई। उन्होंने हमसे कहा, हम मुड़बिद्री में आपका भाषण कराना चाहते हैं, क्या आप बोलेंगे? हमने विनोद पूर्वक कहा, जब भी आप भाषण के लिए कहेंगे तभी हम बोलने को तैयार है, किंतु इसके बदले में आपको महाबंध शास्त्र देना होगा। वे हंसने लगे। हम मूड़बिद्री पहुंचे। वहां जैन नरेशों के अवतार और भक्तिवश निर्माण कराए गए त्रिलोक चूड़ामणि चैत्यालय चंद्रनाथ वसदी की भव्यता तथा विशालता को देख बड़ा आनंद आया। ये हम गए थे यहाँ पर त्रिलोक चूड़ामणि, उस मंदिर का ही नाम है, हजार खम्भे है उसमें, तीन मंजिल का है। पहली मंजिल पर पूरे स्फटिक की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां इस एक कतार में पूरे बेंचेस 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 पर रखी हुई है। नहीं नहीं यहाँ नहीं, नहीं। सिद्धांत ग्रंथ तो उसमें नहीं थे, ये अलग है। उस मंदिर में अफ्रीका के कारीगरों ने आकर प्राचीन समय में शिल्प का कार्य किया था। हमें बताया गया कि पहले जैनियों की वहाँ बहुत समृद्धिपूर्ण स्थिति थी, बड़े बड़े जहाजों के वे अधिपति थे, उनसे वे विदेश जाकर रत्नों का व्यापार करते थे और श्रेष्ठ वस्तु जिनशासन के उपयोग में लाते थे। इस प्रकार वहाँ की अमूल्य अपूर्व मूर्तियां बनाई गई थी। अच्छा, कितने इतने रत्न कुछ कुछ है कि उनके नाम भी कभी केवल हम साहित्य में ही पढ़ते, वैडूर्य मणि, ऐसा मणि, वैसा मणि, इतने 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 से लेकर इतने इतने मूर्तियां बनाई रत्नों की, अपूर्व रत्न है सारे। लिखा ना, अपनी श्रेष्ठ वस्तु जिन साधन के उपयोग में लाते थे। पुरातन जैन वैभव की चर्चा सुन सुनकर हृदय हर्षित हो रहा था। उस समय वयोवृद्ध परम धार्मिक श्री नागराज श्रेष्ठी से भेंट हुई। उन्होंने बड़ा स्नेह व्यक्त किया। हमने विनीत भाव से कहा, बड़ी दया हो यदि इस बार के महाभिषेक की स्मृति में आप लोग महाबंध की प्रतिलिपि करने की अनुज्ञा दे दे। आपके पूर्वजों का ही पुण्य था जो रत्न राशि से भी अधिक मूल्यवान इस ग्रंथ रत्न की अब तक रक्षा हुई। हमारी बात सुनकर उन्होंने कहा, प्रयत्न करो, आपको ग्रंथ मिल जाएगा। हमने कहा, आपके आशीर्वाद और कृपा द्वारा ही यह कठिन कार्य संभव हो सकता है। उन्होंने हमें उत्साहित करते हुए कहा, अगर आप मंजैया हेगड़े तथा रघुचंद्र बल्लाल को यहाँ ला सके तो सरलता से काम बन जाएगा। उन लोगों का यहाँ की समाज पर विशेष प्रभाव है। हेगड़े जी का प्रभाव तो असाधारण है। ये हेगड़े धर्मस्थल के हैं, उन्होंने वहाँ अपना उनका तो मंदिर है ही है, अन्य मतियों का ही भी उन्होंने कुछ वहाँ मंदिर बनाया। मंजूनाथ है नहीं, मगर वो तो सामाजिक बड़े है थे न। उनके अपने घर में तो सोने की सब मूर्तियां हैं। नीचे हम जाके अतः दूसरे दिन सवेरे हम अपने छोटे भाई चिरंजीव, प्रोफेसर सुशील कुमार दिवाकर को तथा ब्रह्मचारी फतेह चंद जी परवार भूषण नागपुर वालों को लेकर धर्मस्थल गए। श्री मंजैया हेगड़े से मूड़बद्री चलने का अनुरोध किया। बड़े आग्रह करने पर उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। धर्मस्थल में धर्ममूर्ति हेगड़े जी के वैभव प्रभाव तथा पुण्य को देखकर आनंद हुआ। धर्मस्थल से वापस होते समय हम वेन्नूर की बाहुबली स्वामी की विशाल एवं उच्च कलापूर्ण मूर्ति के दर्शनार्थ ठहरे। वहां सौभाग्य से दानवीर राव राजा श्रीमंत से हुकुमचंद जी से भेंट हो गई। हमने उन्हें सिद्धांत शास्त्र संबंधी चर्चा सुनाकर संध्या के समय मूड़बिद्री पहुंचने का अनुरोध किया और अपने स्थान पर वापस आए। पश्चात हम श्रीमंत बल्लाल महोदय से मिलने मैंगलोर पहुंचे। उन्होंने पूछा कैसे आए। हमने विनोद पूर्वक कहा, उस दिन आपने कहा था कि मूड़बिद्री में हम आपका व्याख्यान कराना चाहते हैं, आप अब तक नहीं आए। हमने अपने देश वापसी जल्दी जाना है, इससे आपको लेने आए हैं कि आज संध्या को हमारा व्याख्यान सुन ले। वे मुस्कुरा पड़े। अनंतर हमने सब कथा उनको सुनाकर शीघ्र चलने की प्रेरणा की। वे सहर्ष तैयार हो गए। उनकी मोटर में उनके साथ हम मूड़बिद्री के लिए रवाना हुए। मार्ग में हमने सब विषय उनको समक्ष स्पष्ट किया। उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब न लगा। उन्होंने अपार प्रेम दिखाया। मूड़बिद्री वापस आने पर हमें श्री हेगड़े जी तथा सेठ हुकुमचंद जी मिल गए। रात्रि को पूर्वोक्त त्रिलोक चूड़ामणि चैत्यालय चंद्रनाथ वसदी के प्रांगण में सर सेठ हुकुमचंद जी की अध्यक्षता में एक सभा बुलाई गई। अनेक प्रतिष्ठित महानुभाव पधारे थे। मूड़बिद्री मठ के अधिपति आदरणीय भट्टारक जी, चारुकीर्ति पंडिताचार्य स्वामी भी उस सभा में आए थे। ये मूड़बिद्री के तो अलग होते हैं ना। हमने महाबंध संबंधी चर्चा प्रारंभ की। उस समय ज्ञात हुआ कि मूड़बिद्री सिद्धांत शास्त्र मंदिर के ट्रस्टी वर्ग तथा पंच महानुभावों के चित्त में इस बात की गहरी ठेस लगी कि एक जैन पत्र में यह वृत्तांत प्रकाशित किया गया था कि महाबंध शास्त्र न देने में मूड़बिद्री वालों का व्यक्तिगत स्वार्थ कारण है। वे शास्त्र विक्रय करके लाभ उठाना चाहते हैं। इस संबंध में भ्रम निवारण किया गया कि जिन लोगों के पूर्वजों ने त्रिलोक चूड़ामणि चैत्यालय जैसा विशाल जैन मंदिर बनवाया, धर्म सेवा के उज्ज्वल कार्य निस्वार्थ भाव से संपन्न किए, उनके विषय में दूषित कल्पना करना तथा मिथ्या प्रचार करना ठीक नहीं है।
इंदौर
वाले। इसके पश्चात हमने अपने भाषण में मूड़बिद्री के प्राचीन पुरुषों एवं वर्तमान धर्मपरायण समाज के प्रति आंतरिक अनुराग तथा आदर का भाव व्यक्त करते हुए कहा, जब लोग धार्मिक अत्याचार करते थे उस संकट के युग में जिन्होंने शास्त्रों को छिपाकर श्रुति की रक्षा की, उनके प्रति हम हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। किंतु जगत में बड़ा परिवर्तन हो गया, लोग ज्ञानामृत के पिपासु है। बुद्ध भरी स्वामी ने जगत के कल्याण निमित्त महान कष्ट उठाकर इतना बड़ा और अत्यंत गंभीर शास्त्र बनाया है, उसके प्रकाश में आने पर जगत में ग्रंथकर्ता की कीर्ति व्याप्त होगी तथा मुमुक्षुगण अपना हित संपन्न करेंगे। पूज्य पुरुषों की निर्मल कीर्ति का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। सोमदेव सूर्य ने बताया, यशोवध प्राणी वधात गरियान। प्राणघात की अपेक्षा यश का घात करना गुरुतर दोष है, गुरुतर यानी बड़ा दोष है, यानी प्राणी हिंसा से भी बड़ा दोष है। कारण यशोवध द्वारा कल्पांत स्थायी यश शरीर का नाश होता है। कल्पांत के समझते, कल्प का अंत, यानी जो हम कहते हैं छठे काल के अंत में क्या होता है तो वो सब नष्ट हो जाते हैं, तो कल्पांत काल कहते हैं उसको। तो वहां तक रहने वाला जो यश है, यश रूपी शरीर युग के अंत तक रहता है और उसका नाश करना। भूत बलि स्वामी के साहित्य को छिपाने से उनके प्राणघात से भी बढ़कर दोष प्राप्त होता है। भूत बलि स्वामी ने विश्व कल्याण के लिए यह रचना की थी, इस अमूल्य कृति का क्या उन्होंने कुछ मूल्य रखा था? हमारी भक्ति का अर्थ है श्रुत का संरक्षण तथा सुप्रचार। उसे बंधन में रखकर दीमक आदि द्वारा नष्ट होते देखना कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं कही जा सकती। इतने में किसी ने कहा, हमारे यहाँ लोग गरीब है, उनकी सहायता द्रव्य आवश्यक है। इसे सुनते हमने कहा, इन वाक्यों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे दक्षिण के कोई कोई बंधु अपने को गरीब समझ रहे हैं। जिनके पास भगवान गोमटेश्वर जैसी अनुपम प्रभावशाली मूर्ति है, क्या वे गरीब है? जिनके पास बहुमूल्य तथा अपूर्व जिनबिंब विद्यमान है, वे क्या गरीब है? जिनके पास धवल महाधवल सदृश श्रेष्ठ ग्रंथराज है, वे भी क्या गरीब है? यदि इसे ही गरीबी कहा जाता है तो हम ऐसी गरीबी का अभिनंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं। लीजिए भौतिक संसार समुद्री को, समृद्धि को, और हम यह गरीबी दे दीजिए। हमने यह भी कहा, बताइए इन ग्रंथों का आपने क्या मूल्य रखा है? रुपयों का मूल्य तो जाने दीजिए, हम तो जीवन निधि तक अर्पण कर इस आगम निधि को लेने आए हैं। बताइए इससे भी अधिक और मूल्य आपको क्या चाहिए? हम जानते हैं महाबंध सदृश श्रुति की रक्षा निमित्त हमारे सदृश सैकड़ों व्यक्तियों का जीवन नगण्य है। लोग राष्ट्र प्रेम के कारण जीवन उत्सर्ग करते हैं तो सकल संतापहारी श्रुति रक्षार्थ जीवन अर्पण करने में क्या भीती है? कहिए ग्रंथ के लिए आप और क्या मूल्य चाहते हैं? वो स्वयं सुमेरु चंद्र दिवाकर जिन्होंने ये लिखा है, वो यानी कोई ग्रंथ के पीछे कितना कितना एक एक व्यक्ति का योगदान रहा है। हमें तो रेडीमेड ग्रंथ हाथ में आते हैं घर बैठे है? तो उसकी महत्व नहीं समझते हैं, यानी अंदर से कितना हृदय उनका, कितने सालों तक प्रयत्न करते रहे। नहीं मिली थी, तीन लोग गए थे तो कुछ नहीं मिला था, देवला जय देवला कुछ नहीं, दर्शनार्थ दूर से दर्शन मिलते थे। पूरे भारतवर्ष के लोग वहां जाकर दर्शन करते थे। जैसे हम शिखर जी को एक उसका दर्शन करना ही है, बचपन से मन में भावना होती है, वैसे इन ग्रंथों का दर्शन करना ही ऐसी भावना हर एक जीव के रहती। जैनी है तो उनके, हम बम्बई वालों को तो पता ही नहीं होता है कुछ। इस पर विवेक मूर्ति परम सज्जन श्री मंजय हेगड़े ने द्रवित होकर कहा, यू हैव गिवन अस मोर देन वी वांटेड, जो कुछ हम चाहते थे उससे अधिक मूल्य आपने दे दिया। श्री हेगड़े जी की अनुकूलता होने पर आदरणीय भट्टारक जी महाराज, श्री बल्लाल आदि सबने स्वीकृति प्रदान कर दी। हमारे पूज्य बड़े भाई सिंह इमृतलाल जी ने हमसे कहा, यह महान कार्य है, परिणामों में परिवर्तन का पदार्पण होते विलम्ब नहीं लगता, अतः लिखित स्वीकृति आवश्यक है। क्या बात, वह सर्व आशंकाओं को दूर कर देगी। हमने सब समाज से विनय की, आप लोगों ने महाधवल जी की बिना मूल्य प्रतिलिपि प्रदान करने की पवित्र स्वीकृति दी है। समाचार पत्रों में प्रामाणिकता पूर्वक समाचार प्रकाशित करने के लिए आप लोगों की लिखित स्वीकृति महत्वपूर्ण होगी और लोगों को तनिक भी संदेह नहीं रहेगा। सबका हृदय पूर्णतया पवित्र था, स्वीकृति अंतकरण से दी गई थी, अतः प्रमुख पुरुषों ने सहस्र शीघ्र हस्ताक्षर करके स्वीकृति पत्रक हमें दिया। उसे पा हमने अपने को धन्य तथा कृतार्थ समझा। इस कार्य को संपन्न करने में हमें अपने पूज्य पिताजी से विशिष्ट पथ प्रदर्शन प्राप्त हुआ था, कारण वे महान शास्त्रज्ञ, लोक व्यवहार प्रवीण एवं अपूर्व कार्य कुशलता संपन्न थे। उनका प्रभाव भी कार्य संपन्न करने में बड़ा साधन बना। मूढ़ विद्री के पत्रों की महान उदारता को घोषित करने वाला समाचार जब जैन समाज ने सुना, तब चारों ओर सबसे महान हर्ष मनाया और मूढ़ विद्री की समाज के कार्य की प्रशंसा की। किंतु दुर्भाग्य से एक समाचार पत्र में कुछ ऐसे समाचार निकल गए जिससे पुरातन विरोधाग्नि पुनः प्रदीप्त हो उठी। इससे दक्षिण के एक प्रमुख पुरुष ने हमें लिखा, अब आप प्रतिलिपि ले लेना, देखे कौन देता है। इससे हमारी आत्मा कांप उठी। यह ज्ञात कर बड़ा दुख हुआ कि व्यक्तिगत विशेष मान की रक्षार्थ हमारे विज्ञ बंधु ऐसे महत्वपूर्ण विषय को पुनः विरोध और विवाद की भंवर में फंसा रहे हैं। इसके अनंतर ज्ञात हुआ कि न्याय देवता के आह्वान निमित्त कानूनी कार्यवाही भी प्रारंभ होने लगी। उस समय शतभक्त ब्रह्मचारी श्री जीवराज गौतम जोशी, ये शोलापुर के, और मुनि समंत्र भद्र जी, ये जो कुंभोज बाहुबली के, उस समय वो क्षुल्लक थे, उनके प्रभाव तथा सत प्रयत्न से विरोध शांत किया गया। यह चर्चा हमने इससे की कि लोग यह देख ले कि बना बनाया धर्म का कार्य किस प्रकार अकारण या अवांछनीय संकटों में गिर जाता है। सोमदेव सूरी की उक्ति बड़ी अनुभव पूर्वक थी। वे नीति वाक्यामृत में लिखते हैं, धर्मानुष्ठाने भवति अप्रार्थितम अपि प्रातिलोम्यम लोकस्य, धर्म कार्य में लोग बिना प्रार्थना किए गए स्वयमेव प्रतिकूलता धारण करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति पापानुष्ठान के विषय में नहीं होती। और भी विपत्तियों का वर्णन करके हम लेख को बढ़ाना उचित नहीं समझते। संक्षेप में इतना ही कहना है कि बड़े बड़े विचित्र विघ्न आए, किंतु श्रुत देवता के प्रसाद से वे शरद ऋतु के मेघों के सदृश अल्पस्थायी रहे। आपदा का वर्ष बीत गया, फिर भी प्रतिलिपि का कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा था। एक बार श्री मंजय्या हेगड़े ने अपने धर्मस्थल के सर्वधर्म सम्मेलन में मुझे बुलाया। वहाँ सभी धर्मों का इकट्ठा वो करते हैं कुछ। वहाँ पहुँचने से प्रतिलिपि का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने में विघ्न नहीं आता, किंतु कारण विशेष से पहुँचना न हो सका। कुछ समय के अनंतर दिसंबर सन 1941 में गोमटेश्वर महामस्ताभिषेक फंड समिति कमेटी की बैठक में सम्मिलित होने को हमें बेंगलोर जाना पड़ा। उत्तर भारत से केवल श्रीमन शेठ हुकुमचंद जी, शेठ भागचंद जी सोनी पहुंचे थे। मीटिंग के पश्चात हम ग्रंथ प्राप्ति की आशा से श्री मंजय्या हेगड़े, रघुचंद्र बल्लाल जैन, जिनराज हेगड़े एडवोकेट, एमएलए श्री शांतिराज जैन तथा आस्थान महाविद्वान के साथ मूड़ बिद्री के लिए रवाना हुए। सब लोग अनावश्यक कार्यवश अपने अपने घर चले गए तथा हम अकेले मूड़ बिद्री पहुंचे। दो तीन दिन प्रयत्न करने पर भी प्रतिलिपि का कार्य प्रारंभ न हो सका। आगे कब तक प्रतीक्षा करने पड़ेगी यह भी पता नहीं चलता था। इससे चित्त में विविध संकल्प विकल्प उत्पन्न होते थे। चित्त अपार चिंता मग्न था, जिनेन्द्र भक्ति का एकमात्र अवलंबन था। परम सौभाग्य से तीन दिन की प्रबल प्रतीक्षा के पश्चात व्यवस्थापक बंधु श्री धर्मपाल जी श्रेष्ठी की विशेष कृपा हुई। उन्होंने भंडार खोलकर महाबंध शास्त्र की ताड़पत्रीय प्रति हमारे समक्ष विराजमान कर दी। जिनेन्द्र देव तथा जिनवाणी की पूजा के अनंतर हमने स्वयं देवनागरी लिपि में प्रतिलिपि प्रारंभ करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। वह 30 दिसंबर 1941 का दिन जैन साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। अभी दिसंबर है, आज 13 है, वो 30 था 1941, और हम आज पढ़ रहे 2010 में। अनंतर प्रतिलिपि का कार्य पंडित लोकनाथ जी शास्त्री के तत्वावधान में संपन्न होता रहा। 30 दिसंबर 1942 तक कार्य पूर्ण हो गया। पहले मूड़ बिद्री के भंडार के लिए यह कापी 4 वर्ष में तैयार की गई थी। यह कार्य शीघ्र संपन्न करने का श्रेय उक्त शास्त्री जी के सहयोगी विद्वान पंडित नागराज जी तथा देव कुमार जी को भी है। भट्टारक महाराज तथा व्यवस्थापकों की भी विशेष कृपा रही, जो उन्होंने इस कार्य में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होने दी। इस संबंध में श्री मंजय्या हेगड़े के हम अत्यंत कृतज्ञ हैं। उन्होंने सर्वदा इस पुण्य कार्य में सर्व प्रकार का सहयोग प्रदान किया। कुछ विद्वानों ने उत्तर भारत से श्री हेगड़े जी को प्रतिलिपि न देने का अप्रार्थित बहुमूल्य परामर्श दिया, किंतु विद्वान हेगड़े महाशय के उत्तर से उन लोगों को चुप होना पड़ा। जब हम आपत्तियों से आकुलित होकर हेगड़े जी को लिखते थे तो उनके उत्तर से निराशा दूर हो जाती थी। उन्होंने हमें लिखा था, आप भय न करें, ग्रंथ प्रकाशन के विषय में कोई भी बाधा न आएगी। प्रतिलिपि का कार्य आपकी इच्छानुसार होता रहे, इस पर मैं विशेष ध्यान रखूंगा। उन्होंने अपने वचन का पूर्णतया रक्षण किया। यथार्थ में वे महापुरुष थे। कुछ भी भेंट लिए बिना प्रतिलिपि की अनुज्ञा प्रदान करने की उदारता तथा कृपा के उपलक्ष्य में हम सिद्धांत मंदिर के ट्रस्टियों तथा मूड़ बिद्री के पंचों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। भट्टारक महाराज के भी हम अत्यधिक कृतज्ञ हैं। मूड़ बद्री के महानुभावों के हार्दिक प्रेम, कृपा तथा उदार भाव की स्मृति चिरकाल पर्यंत अंतकरण में अंकित रहेगी। मूड़ बद्री में प्रतिलिपि कराने में जो द्रव्य व्यय हुआ, वह सेठ गुलाबचंद जी हीराचंद जी सोलापुर के पास से प्राप्त हुआ था। इसके लिए उन्हें धन्यवाद है। ब्रह्मचारी श्री जीवराज जी ने इस श्रुत रक्षा या सेवा के कार्य में जो सत परामर्श तथा सर्व प्रकार का सहयोग दिया, उसके लिए हम अत्यंत अनुग्रहित है। दानवीर साहू श्री शांति प्रसाद जैन की वदान्यता से स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ काशी ने इस टीका के प्रकाशन की उदारता की, इसके लिए हम साहू शांति प्रसाद जी के अत्यंत अनुग्रहित है। पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य ने प्रकाशन निमित्त जो श्रम किया, उसके लिए उन्हें विशेष धन्यवाद है। इस शास्त्र का तेजी के साथ शब्दानुवाद प्रथम बार वैद्यराज पंडित कुंदनलाल जी परवार न्यायतीर्थ तथा पंडित परमानंद जी साहित्याचार्य के सहयोग से लगभग सवा माह में पूर्ण हुआ था। इसके पश्चात पंडित कुंदनलाल जी के अस्वस्थ हो जाने के कारण उनका बहुमूल्य सहयोग न मिल सका। पंडित परमानंद जी का लगभग 2-1 सप्ताह और सहयोग बड़ी कठिनाई से मिला और आगे वे सहयोग न दे पाए। उन विद्वानों के अमूल्य सहयोग के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। आद्य अनुवाद की प्रति देखकर अनेक अनुभवी विद्वानों ने सलाह दी कि संपूर्ण टीका पुनः लिखी जानी चाहिए। यह ग्रंथ महान है। हमने भी जब विशेष शास्त्रों का अभ्यास किया और रचना का सूक्ष्मतया निरीक्षण किया, तब नवीन रूप से टीका निर्माण करना ही उचित जचा। महाबंध की टीका को मुख्य कार्य समझ हम इसमें संलग्न हो गए। लगभग 3 वर्ष में यह कार्य बन पाया। बना या नहीं, यह हम नहीं कह सकते। हमारा भाव यह है कि इसमें पूर्वोक्त समय लगा। इस अनुवाद में विशेषार्थ, टिप्पणी, शुद्ध पाठ, योजना आदि भी कार्य हुए। इस अपेक्षा से यह टीका पूर्णतया नवीन समझना चाहिए। 1945 के ग्रीष्मावकाश में न्यायालंकार सिद्धांत महोदधि गुरुवर पंडित वंशीधर जी शास्त्री ने सिवनी पधारकर अनुवाद को ध्यानपूर्वक देखा। उनके संशोधन के उपलक्ष्य में हम हृदय से कृतज्ञ है। यह उनकी ही कृपा है जो यह महान कार्य हम जैसे व्यक्ति से संपन्न हो गया। पंडित हीराला जी शास्त्री साढ़ूमल ने अनेक बहुमूल्य परामर्श तथा सुझाव प्रदान किए थे। पंडित फूलचंद जी शास्त्री ने सिवनी पधारकर अनेक महत्वास्पद बातें सुझाई थी। इसके लिए हम दोनों विद्वानों के अनुग्रहित हैं। अन्य सहायकों के भी हम आभारी हैं। हमें स्वप्न में इस बात का भान न था कि महाबंध की प्रति मूल विधि से प्राप्त करने का परम सौभाग्य हमें मिलेगा और उसकी टीका करने का भी अमूल्य अवसर आएगा। जैन धर्म के प्रसाद से और चारित्र चक्रवर्ती प्रातस्मरणीय पूज्य आचार्य 108 श्री शांति सागर महाराज के पवित्र आशीर्वाद से यह मंगलमय कार्य सम्पन्न हुआ। प्रमाद और अज्ञानवश टीका में जो भूले हुई है उन्हें विशेषज्ञ विद्वान क्षमा करेंगे और संशोधनार्थ हमें सूचित करने की कृपा करेंगे, ऐसी आशा है। ऐसे महान कार्य में भूले होना असंभव नहीं है। को विमुह्यति शास्त्र समुद्रे, सुमेरु चंद्र दिवाकर। प्रस्तावना देखिए, देखो पढ़ने से उसके पीछे के लोगों का क्या, यानी कितनी कठिनाई से यह ग्रंथ बाहर आया है, इसको आप सोच सकते हैं। प्रस्तावना, महाबंध पर प्रकाश। जिनेन्द्र देव की निर्दोष वाणी रूप होने के कारण संपूर्ण आगम ग्रंथ समान आदर तथा श्रद्धा के पात्र है। फिर भी जैन संसार में धवल जयधवल महाधवल नामक शास्त्रों के प्रति उत्कट अनुराग एवं तीव्र भक्ति का भाव विद्यमान है। इस विशेष आदर का कारण यह है, तीर्थंकर भगवान महावीर प्रभु की दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर गणधर देव ने ग्रंथ रचना की। वह मौखिक परंपरा के रूप में विशेष ज्ञानी मुनिन्द्रों की चमत्कारिणी स्मृति के रूप में हीयमान होती हुई विद्यमान थी, यानी घटती हुई। महावीर निर्वाण के 683 वर्ष व्यतीत होने पर अंगों और पूर्वों के एक देश का भी ज्ञान लुप्त होने की विकट स्थिति आ गई। यानी वो एक देश ज्ञानी था, पार्शल ज्ञानी था, अंगों का और पूर्वों का, यानी इस अंग का थोड़ा, उस अंग का थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ज्ञान उपलब्ध था। उस समय अग्रायणी पूर्व के चयन लब्धि अधिकार के चतुर्थ प्रावृत कम्म पैड़ी के 24 अनुयोग द्वारों से षटखंडागम के 4 खंड बनाए गए, जिन्हें वेदना, वर्गणा, खुद्दा बंध तथा महाबंध कहते हैं। बंधक अनुयोग द्वार के अन्यतम भेद बंध विधान से जीवठान का बहुभाग तथा तीसरा बंध सामित्य विषय निकले। इस प्रकार षटखंडागम का द्वादशांग वाणी से संबंध है। यानी मूल जो 12 अंगों की रचना हुई थी उनमें से जो कुछ कहां से कौन सा अंश लिया गया उसकी बात है। इस प्रकार ज्ञान प्रवाद नामक पंचम पूर्व के दशम वस्तु अधिकार के अंतर्गत तीसरे पेज दोष पाहुड़ी से कषाय प्रावृत की रचना की गई। जो अभी हमने जयधवल पढ़ा ना, वो कषाय प्रावृत के ऊपर रचा गया है। इन ग्रंथों का द्वादशांग वाणी से अविच्छिन्न संबंध होने के कारण द्वादशांग वाणी के समान श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक आदर किया जाता है। षटखंडागम के महाबंध को छोड़कर 5 खंडों पर जो वीरसेनाचार्य रचित टीका है उसे धवल कहते हैं। महाबंध पर कोई टीका उपलब्ध नहीं है, यानी वो तो डायरेक्ट है क्योंकि वो तो विस्तार से ही कथन किया है, तो पहले उसमें तो टीकाएं लिखी है। कषाय प्रावृत में गुणधर आचार्य रचित 180 गाथाएं अभी हमने देखी थी ना, और उसमें भाष्य गाथा भी थी। इनमें 53 गाथाएं और जोड़ने पर गुणधर आचार्य रचित कुल गाथाओं की संख्या 233 हो जाती है। जयधवला टीका में कहा है, कषाय पाहुड़े 1600 पद सहस्राणी, यानी 16000 पद है। एदस अवसंहार गाहाओ गुणहर मुह कमल विनिग्गियायो, यानी गुणधर के मुख कमल से जो निकले हैं। 33 विशद मित्यो, यानी 33 अधिक द्विशतक यानी 233 है। यति ऋषभ आचार्य ने 6000 श्लोक प्रमाण चूर्णी सूत्र बनाए। देखो आप कहेंगे वो तो सूत्र बनाए, श्लोक कहाँ बनाए? तो इन सूत्रों में जो अक्षर आते हैं ना उनको गिनते हैं, और जहाँ 32 अक्षर होते हैं उसको एक श्लोक कहा जाता है। यानी वो जो गद्य रचना है ऐसी हमारी कितनी, उसको भी श्लोक में बताते हैं। क्योंकि पहले तो बिल्कुल एक के आगे कंटिन्यूएशन में ऐसे लाइन्स में अक्षर लिखे जाते थे, और एक एक लाइन में कितने वो गिनते थे, तो इतने हजार प्रमाण वो ग्रंथ रचना हुए ऐसा कहते थे। इसकी 72000 श्लोक प्रमाण टीका वीरसेन आचार्य तथा उनके शिष्य भगवत जिनसेन स्वामी ने बनाई, उसका नाम जयधोला टीका है। यानी जो 16 पुस्तक में जो हमने पढ़े प्राकृत प्राकृत उसके केवल, तो उसको 72000 श्लोक प्रमाण हुए। सूत्र रचना षटखंडगम में जीवोत्थान के प्रारंभित सत प्ररूपण अधिकार के केवल 177 सूत्रों की रचना पुष्पदंत आचार्य ने की है, शेष समस्त रचना भूतबली स्वामीकृत है। जीवोत्थान खुद्दाबंध बंध सामित्व वेदना और वर्गणा इन सूत्र रूप 5 खंडों की श्लोक संख्या 6000 प्रमाण है। छठे खंड महाबंध में 40000 श्लोक प्रमाण सूत्र है, वो सब मिलकर भी 6000 और ये अकेला 40000। साधारणतया संपूर्ण धवला जयधवला टीका को द्वादशांग से साक्षात संबंधित समझा जाता है। महाबंध का प्रमाण द्वादशांग वाणी से संबंध रखने वाले प्राचीन साहित्य की दृष्टि से गुणधर आचार्य रचित 233 गाथाओं को जो विशेषता प्राप्त होगी वह उन पर रची गई 72000 श्लोक प्रमाण टीका को नहीं होगी। इस दृष्टि से यदि धवला टीका पर प्रकाशित प्रकाश डाला जाए तो कहना होगा कि 60000 श्लोक प्रमाण टीका भी 9वीं सदी की है। प्राचीन अंश 5 खंडों के रूप में केवल 6000 श्लोक प्रमाण है। महाबंध ग्रंथ की संपूर्ण 40000 श्लोक प्रमाण रचना भूतबली स्वामीकृत होने के कारण अत्यंत प्राचीन तथा महत्वपूर्ण है। यानी धवला वगैरह तो 9वीं सदी में हुआ, ये वो तो टीका है, धवला वगैरह तो टीका है, और प्राचीन जो मूल में लिखी तो 6000 थी, और महाबंध मूल टीका ही 40000 श्लोक प्रमाण भूतबली स्वामीकृत होने के कारण अत्यंत प्राचीन तथा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सबसे प्राचीन जैन वांग्मय की दृष्टि से महाबंध सूत्र की रचना धवला जयधवला टीकाओं के मूल की अपेक्षा लगभग 7 गुणी है। ब्रह्मचारी हेमचंद्र रचित श्रुत स्कंद में लिखा है 70000 धवलो जयधवलो 60000 बोधवो महाबंधम 40 सिद्धंततयम अहम वंदे। धवल शास्त्र 70000 प्रमाण, जय धवल 60000 प्रमाण और महाबंध 40000 प्रमाण है। इन सिद्धांत शास्त्र त्रय की मैं वंदना करता हूँ, परंतु धवल और जय धवल ये तो बाद में लिखे गए, मूल में 6000 ही थे, उसका वो विस्तार है जो वीरसेन स्वामी ने किया, और महाबंध तो ओरिजिनल है, भूतबली ने लिखा हुआ। इंद्र नंदी ने महाबंध को हाँ वो टीका है, षटखंडागम पहले 5 खंडों की टीका है, धवल और जयधवल नहीं, धवल 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 है, 5 खंड धवल में आते हैं, और छठा खंड पूरा अभी बताया ना 40000, यानी जो 5 खंड मिलकर 6000 प्रमाण मूल में थे, 6000 श्लोक प्रमाण 5 खंड, जिसके ऊपर टीका धवल हुई है वो 70000 हाँ, उसके जयधवल हाँ उसकी रचना हाँ कषाय पाउड के वो अलग भूत बलि और पुष्पदंत ने जो लिखा वो षटखंडा हो, और कषाय पाहुड़ वो भी गुणधर भट्टानक ने लिखा, वो भी ओरिजिनल द्वादशांग से उसकी कनेक्शन है, वो कषाय पाहुड़ वो अलग नहीं है। कषाय पाहुड़ ओरिजिनल ग्रंथ है, जो अंगों और सूत्रों, जो मूल सूत्र की रचना है वो, और ये भी जो षटखंडागम है वो भी मूल से लिया हुआ है। तो षटखंडागम में पांच खंड में से धवल हुआ, और कषाय प्रावृत के ऊपर जय धवल हुआ, और महाबंध तो ओरिजिनली 40,000 प्रमाण
का
छठा खंड, पहले पांच खंड 6,000 में, 6,000 ओरिजिनल 6,000 थे, और छठा खंड अकेला 40,000 श्लोक प्रमाण का। इंद्र नंदी ने महाबंध को 30,000 कहा, और ब्रह्म हेमचंद्र 40,000 श्लोक प्रमाण बताते हैं। इस मतभेद का कारण यह विदित होता है कि संभवतः इंद्र नंदी ने महाबंध में उपलब्ध अक्षरों की गणना अनुसार अपनी संख्या निर्धारित की, और ब्रह्म हेमचंद्र ने महाबंध के संक्षिप्त किए सांकेतिक अक्षरों को संभवतः पूर्ण मानकर गणना की। जिसे ओराल ये शरीर को महाबंध में ओरा ऐसा लिखा है, तो उसने दो गिने, उन्होंने चार गिने, पूरा गिना। इसे इंद्र नंदी ने दो अक्षर माने और ब्रह्म हेमचंद्र ने सात अक्षर रूप गिना। समस्त ग्रंथ में पुनः पुनः प्रकृति आदि के नामों की गणना हुई है, इस कारण भूत बलि स्वामी ने सांकेतिक संक्षिप्त शैली का आश्रय किया, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। अतः इंद्र नंदी और हेमचंद्र की गणना में भिन्नता, तात्विक भिन्नता नहीं है। महाधवल, जैन समाज में महाबंध शास्त्र महाधवल जी के नाम से विख्यात है। महाबंध नाम को पढ़कर कुछ लोग तो भ्रम में पड़ेंगे, यथार्थ में ग्रंथ का नाम महाबंध के अनुभाग खंड के अंत की प्रशस्ति से प्रमाणित होता है। वहाँ लिखा है, सकल धरित्री विनुत प्रकटितम अधीशे मल्लिकौवे वेरिसी सत्पुण्या कर महाबंध पुस्तकम श्री माघनंदी मुनिपति गित्तल। यह महाबंध भूतबली स्वामी द्वारा रचित है, इस बात का निश्चय धवला टीका के अवतरण से होता है। जम तम बंध विहानम तम चौविहम पैडी बंधो ठिदी बंधो अनुभाग बंधो पदेश बंधो चेदी एदेसिम चदुन्नम बंधानम भूदबली भडारेण महाबंधे सप्पवंचेन लिहिदम ती अम्मे ही एथन लिहिदम। उसका अर्थ नीचे देखते हैं। धवला टीका महाबंध शास्त्र के रचयिता के रूप में भूतबलि का नाम बताती है। ये धवला टीका में महाबंध के बारे में लिखा है। महाबंध नाम का परिज्ञान पूर्वोक्त अनुभाग बंध की प्रशस्ति से होता है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है, यानी इसका नाम है ये महाबंध है, इसका ज्ञान कहाँ से होता है, वो धवला में जो लिखा है उससे होता है कि महाबंध के निर्माता भूतबलि स्वामी है। इसी महाबंध की महाधवल के नाम से ख्याति है, ख्याति यानी प्रसिद्धि है। संवत 1617 तक महाधवल की प्रसिद्धि विदित होने का प्रमाण उपलब्ध है। कारंजा के प्राचीन शास्त्र भंडार से प्रतिक्रमण नाम की एक पोथी है, उसमें यह उल्लेख पाया जाता है, धवलो ही महाधवलो जय धवलो विजय धवलश्च ग्रंथा श्री भक्मिरभी प्रोक्ता कविधातरस्तस्मस्मात् कवि धातरस्तस्मात्। धवल जय धवल तथा महाधवल के साथ विजय धवल का नवीन उल्लेख है, जो अनुसंधान का विषय है। आगे लिखा है, ये बीच में प्रश्न चिन्ह लगा है, शायद उसमें कुछ तत्पट्टे धरसे नक समभव सिद्धांतगसे शुभ तत्पट्टे खलु वीरसे न मुनिपो यश्चित्रकूटे परे येलाचार्य समीगम कृततरम सिद्धांतमल्पस्य ये वाटे चैत्यवरे द्विसप्तिमति सिद्धाचलम सक्रिरे संवत 1637 अश्विन मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ शनिवासरे शिवदासे ने लिखितम कवि वृंदावन जी ने महाधवल नाम प्रयुक्त किया है। पंडित प्रवर टोडरमल जी की गुमरसार कर्मकांड की टीका में भी महाधवल नाम आया है। तहां गुणस्थान विषय पक्षांतर जो महाधवला का दूसरा नाम कषाय प्रावृत ताका करता यति उषभाचार्य ताके अनुसार ताकरी अनुक्रम ते कही है। कषाय प्रावृत पर वीरसेनाचार्य ने जो जयधवला टीका लिखी है उससे विदित होता है कि कषाय पाहुड़ के गाथा सूत्रों पर यति ऋषभ आचार्य ने चुन्नी सूत्र बनाए थे। इसे पंडित टोडरमल जी ने महाधवल ग्रंथ रूप में कह दिया। प्रतीत होता है कि सिद्धांत ग्रंथों का साक्षात्कार न होने के कारण कषाय प्रवृत्त का नामांतर महाधवल लिखा गया है। महाधवल नाम का प्रचार का कारण, यहाँ यह विचार उत्पन्न होता है कि महाबंध शास्त्र का नाम महाधवल प्रचित होने का क्या कारण। इस संबंध में यह विचार उचित जस्ता कि महाबंध में बुद्धबली स्वामी ने अपने प्रतिपाद्य विषय का स्वयं अत्यंत विशद तथा स्पष्टता पूर्वक प्रतिपादन किया है। इसी कारण वीरसेन आचार्य अपनी धवला टीका में लिखते हैं, इन चार बंधों का विस्तृत विवेचन बुद्धबली भट्टारक ने महाबंध में किया है, अतः हम यहाँ इस संबंध में कुछ नहीं लिखते। महाबंध के विशेषण रूप में महाधवल शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं दिखता। यह भी संभव दिखता है कि विशेष के स्थान में विशेषण ने ही लोक दृष्टि में प्राधान्य प्राप्त किया है। यह भी प्रतीत होता है कि परंपरा शिष्य सदृश वीरसेन जिनसेन स्वामी ने अपनी सिद्धांत शास्त्र की टीकाओं के नाम धवला जयधवला रखे, तब स्वयं स्पष्ट प्रतिपादन करने वाले गुरुदेव बुद्धबली की महिमा पूर्ण कृति को भक्ति तथा विशिष्ट अनुरागवश महाधवल कहना प्रारंभ कर दिया होगा। महाबंध के महाधवल के नाम के बारे में सन 1945 में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर महाराज के समक्ष चर्चा करने का अवसर आया था। इस ग्रंथ की प्रस्तुत हिंदी टीका का आचार्य महाराज ध्यानपूर्वक स्वाध्याय कर चुके थे, अतः ग्रंथराज से प्राप्त परिचय के आधार पर आचार्य महाराज ने कहा था, सचमुच में यह ग्रंथ महाधवल है। बंध पर स्पष्टता पूर्वक प्रतिपादन करने वाला शास्त्र यथार्थ में महान है। बंध का ज्ञान होने पर ही मोक्ष का बराबर ज्ञान होता है। समय सार पहले नहीं चाहिए, पहले महाबंध चाहिए। पहले सोचो हम क्यों दुख में पड़े हैं, क्यों नीचे हैं। तीन सौ 363 पाखंड मत वाले भी पूर्ण सुख चाहते हैं किंतु मिलता नहीं। हमें कर्मक्षय का मार्ग ढूंढना है। भगवान ने मोक्ष जाने की सड़क बताई है, चलोगे तो मोक्ष मिलेगा, इसमें शंका क्या। यह महाबंध शास्त्र वस्तुतः महाधवल है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए आचार्य महाराज ने एक विद्वान ब्राह्मण पुत्र की कथा सुनाई थी, जिसको उसके पिता ने, जो राज पंडित था, अपने जीवन काल में अर्थकारी विद्या नहीं सिखाई थी, केवल इतनी बात सिखाई थी, अमुक कार्य करने से अमुक प्रकार का बंध होता है। बंध शास्त्र में पुत्र को प्रवीण करने के अनंतर पिता की मृत्यु हो गई। अब पितृविहीन विप्रपुत्र ब्राह्मण का पुत्र अपनी आजीविका कोई मार्ग नहीं सुझा, अतः वह धन प्राप्ति निमित्त राजा के यहाँ चोरी करने पहुंचा। उसने रत्न सुवर्ण आदि बहुमूल्य सामग्री हाथ में ली तो पिता के द्वारा सिखा गया पाठ उसे स्मरण आ गया। इस कार्य के द्वारा अमुक प्रकार का दुखदायी बंध होता है, अतः बंध के भय से उसने राजकोष का कोई भी पदार्थ नहीं चुराया। उसे वापस निराशा लौटते समय मार्ग में भूसा मिला। भूसा के लेने में क्या दोष है, यह पिता ने नहीं सिखाया था, इसलिए वह भूसा का ही गट्ठा बांधकर साथ ले आया चला। पहरेदारों ने उसे पकड़कर राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने पूछा, तुमने स्वर्ण रत्नादि को छोड़कर भूसा की चोरी क्यों पसंद की। तब ब्राह्मण पुत्र ने बताया कि मेरे पिताजी ने अपने जीवन में मुझे केवल बंध का शास्त्र पढ़ाया था, उसमें भूसा को लेने में कोई दोष का कोई उल्लेख न पाकर मैंने उसे ही चुराना निर्दोष समझा। अपने राजपुरोहित के पुत्र को इतना अधिक पाप भीरु देख राजा प्रभावित हुआ और उसने उसको अत्यंत विश्वासपूर्वक उच्च पद देकर निराकुल कर दिया। इस कथा को सुनाते हुए आचार्य ने कहा, बंध का ज्ञान होने से जीव पाप से बचता है, इससे कर्मों की निर्जरा भी होती है। बंध का वर्णन पढ़ने से मोक्ष का ज्ञान होता है। बंध का वर्णन करने वाला यह शास्त्र वास्तव में महाधवल, इसे बहुत विशुद्धता होती है। महाबंद का अध्ययन बुद्धि का विलास या बौद्धिक व्यायाम की सामग्री मात्र उपस्थित करता है, यह धारणा यथार्थ है। यानी केवल वो इंटेलिजेंट लेवल पर पढ़ना ये बात नहीं है। इस आगम रूप महान शास्त्र से आत्मा का वास्तविक कल्याणप्रद अमृत का निर्मल निर्झर प्रवाहित होता है। उसमें निमग्न होने वाला मुमुक्षु महान शांति तथा आह्लाद को प्राप्त करता है। उसके असंख्यात गुणश्रेणी रूप कर्मों की निर्जरा भी होती है। आचार्य ऋतुषभ ने तिलोय पंडिति में कहा है, परमागम के अध्ययन द्वारा अनेक लाभ होते हैं। उससे अन्नानस्य विनाशम, अज्ञान का नाश होता है। नान दिवायरस उत्पत्ति, ज्ञान सूर्य की प्राप्ति होती है। पड़ी समय असंख्य गुणश्रेणी कम्म निर्जरण, प्रतिक्षण असंख्यात गुणश्रेणी रूप कर्मों की निर्जरा होती है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है, महाबंध का परिशीलन विचारों को, बुद्धि को एवं आत्मा को धवल ही नहीं महाधवल बनाता है। इस दृष्टि से महाधवल इस नाम के प्रचार में भी सहायता या प्रेरणा प्रदान की होगी। महाबंध का परिशीलन तथा मनन करते समय यह बात समझ में आई कि जब तक मनोवृत्ति पवित्र तथा निराकुल न हो, तब तक ग्रंथ का पूर्वापर गंभीर विचार नहीं हो पाता। महाधवल मनोवृत्ति पूर्वक महाबंध का रसास्वादन किया जा सकता है। अतः इस मनोवृत्ति को लक्ष्य में रखकर भी यह महाधवल नाम प्रचलित हो गया प्रतीत होता है। चारित्र चक्रवर्ती मुनिन्द्र शांति सागर महाराज ने जो यह कहा था कि सचमुच यह ग्रंथ महाधवल है, वो यथार्थ है। कवि की कल्पनाएं विचारों के द्वारा जैसे काव्य की रचना होती है, उसी प्रकार यह महाबंध शास्त्र भूतबली स्वामी के व्यक्तिगत अनुभव विचार या कल्पनाओं की साकार मूर्ति नहीं है। इस ग्रंथ का प्रमेय सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा प्रकाशित किया था। यानी ऐसे किसी के अपनी मन की रचना नहीं है, डायरेक्ट दिव्य ध्वनि से चली आई बात है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के प्रभात में विपुलाचल पर्वत पर सर्वज्ञ महावीर तीर्थंकर की कल्याणकारिणी धर्मदेशना हुई थी। उसे गौतम गोत्री चतुर्विध निर्मल ज्ञान संपन्न संपूर्ण दुश्रुति में पारंगत, क्या कहते हैं ये, दुश्रुति में पारंगत थे पहले, यानी अन्य मति के थे ना, इंद्रभूति ब्राह्मण ने वर्धमान भगवान के पादमूल में उपस्थित हो सुना और अवधारण किया था। अनंतर गौतम स्वामी ने उस वाणी की द्वादशांक तथा चतुर्दश पूर्वरूप ग्रंथात्मक रचना एक मुहूर्त में की। एक्केन च मुहूर्तेन कमेन रेण कदा। उत्तर पुराण में गुणभद्र स्वामी ने कहा है, अंगों की रचना पूर्व रात्रि में की गई थी और पूर्वों की रचना रात्रि के अंतिम भाग में की गई थी। अंगानाम ग्रंथ संदर्भ पूर्वरात्रि व्यधाम्यहम पूर्वाणाम पश्चिमे भागे। इस संबंध में भगवान महावीर को अर्थकर्ता कहा गया है और गौतम स्वामी को ग्रंथकर्ता। गौतम ने द्रव्य श्रुति की रचना की थी। तिलोय पंडितिकार का कथन है, ये मूल तंतकत्ता श्री वीरो इंद भूदि विपयवरो उवतंते कत्तारो अनुतंते शेष आईरिया। इस प्रकार श्री भगवान वीर भगवान मूल तंत्रकर्ता का, विप्र शिरोमणि इंद्रभूति उपतंत्रकर्ता तथा शेष आचार्य अनुतंत्रकर्ता, ग्रंथकर्ता को ही है श्रुतकर्ता। इस द्वादशांग रूप परमागम का प्रमेय सर्वज्ञ भगवान वर्धमान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि से प्राप्त होने से वह प्रमाण रूप है। गणधर का भी व्यक्तित्व लोकोत्तर था। गौतम गणधर के विषय में जयधवला में लिखे गए ये शब्द ध्यान देने योग्य है, जो आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं। मति शुद्ध अवधि मनपर्य इन चार निर्मल ज्ञानों से संपन्न है, जिन्होंने दीप्त उग्र और तप्त तप को तपा है, जो अणिमा आदि आठ प्रकार की वैक्रिक लब्धियों से संपन्न है, जिनका सर्वार्थ सिद्धि में निवास करने वाले देवों से अनंत गुणा बल है, जो एक मुहूर्त में बारह अंगों के अर्थ और द्वादशांग रूप ग्रंथों के स्मरण और पाठ करने में समर्थ है, जो अपने हाथ रूपी पात्र में दी गई खीर को अमृत रूप में परिवर्तित करने में या उसे अक्षय बनाने में समर्थ है, ये उनकी जो रिद्धि होती है ना, अमृत श्राविणी होती है और अक्षुण्ण महारस वगैरह क्या क्या होते हैं, जिन्हें आहार और स्थान के विषय में अक्षीण रिद्धि प्राप्त है, जिन्होंने सर्वावधि ज्ञान से समस्त पुद्गल द्रव्य का साक्षात्कार कर लिया है, क्या बात है, जिन्होंने अपने तप के बल से विपुलमति मनपरे ज्ञान उत्पन्न कर लिया है, जो सप्त प्रकार के भय से रहित है, जिन्होंने क्रोध मान माया तथा लोभ रूप पशाओं का क्षय किया है, जिन्होंने पांच इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने मन वचन तथा काय रूपी तीन दंडों को भग्न कर दिया है, जो छह कायिक जीवों की दया पालने में तत्पर है, जिन्होंने कुलमद आदि अष्टमदों को नष्ट कर दिया है और जो क्षमा आदि दस धर्मों में निरंतर उद्यत है, जो पांच समिति और तीन गुप्ति रूप अष्ट प्रवचन मातृकाओं का, ये पांच समिति और तीन गुप्ति संबंधी जो ज्ञान है ना, उसको अष्ट प्रवचन माता कहते हैं, पालन करते हैं, जिन्होंने क्षुधारी 22 परिषदों को जीत लिया है और जिनका सत्य ही अलंकार है, सच्चालंकारस्य, ऐसे आर्य इंद्रभूति के लिए उन महावीर भट्टारक ने अर्थ का उपदेश दिया। ये जयदेवला टीका भाग एक में लिखा है। ऐसी महनीय विभूति गुरु गौतम गंधर्व रचित होने से समस्त द्वादशांग वाणी पूज्य तथा विश्वसनीय है। यह द्वादशांग समुद्र के समान विशाल तथा गंभीर है। संपूर्ण द्वादशांग की मध्यम पद के रूप में गणना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे कविवर ज्ञानत राय जी इस प्रकार बताते हैं। एक सौ बारह कोड़ी बखान लाख चौरासी ऊपर जान रावण सहस पंच अधिकानो द्वादश अंग सर्व पद मानो एक सौ बारह कोड़ी बखानो लाख चौरासी ऊपर जानो रावण सहस पंच अधिकानो द्वादश अंग सर्व पद मानो, यानी 12 अंगों के सभी पद कितने हैं? 112 कोड़ी 84 लाख 58,000 और 5, यानी लिखा ना संपूर्ण शत ज्ञान में पदों की संख्या इतनी। 12 अंगों में निबद्ध अक्षरों के अतिरिक्त अक्षरों का प्रमाण, ये तो ये 12 अंगों में हुए, और इसमें जो बचे बाकी शेष बचे तो ये कितने होते हैं? 8 करोड़ 1,08,175। इनकी अनुष्टुप छंद रूप गणना करे तो, अनुष्टुप छंद यानी वो तो 32 अक्षरों का श्लोक बनाएंगे, तो ये रिमेनिंग की वो कितने थी?
2,50,000
नहीं, 25,03,380 और 15 अक्षर। प्रथम अंग का नाम आचारांग है, इसमें 18,000 पद करे हैं। ये मध्यम पद रूप है। एक मध्यम पद में कितने श्लोक होंगे इसके विषय में कहा है? तोड़ी कावन आठ ही लाखम सहस चौरासी छह सौ बाकम साढ़े इक्कीस श्लोक बताए एक एक पद के गाए। क्योंकि एक पद में यदि हम श्लोक बनाएंगे तो पद कितने का होता है? अक्षरों का, कितने अक्षरों का एक पद होता है बोलो अश्विन भाई? हाँ, वो नहीं मध्यम पद, सोलह सौ चौतीस करोड़ 83,07,888, उसमें 32 से भाग दो तो ये प्रमाण आएगा 51,08,684,84,000 और 600 और 21,500। ख्याल में ही आया, एक पद कितना है, अभी हमने क्या कहा एक श्लोक कितना है, तो 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। ऐसे एक पद कितने अक्षरों का होता है, मध्यम पद, मध्यम पद जिसको कहते हैं, तो 1634,83,07,888 अक्षरों का एक पद होता है मध्यम पद। तो उस मध्यम पद में हम 32 से भाग देंगे तो हमें श्लोकों का प्रमाण मिलेगा, 32 अक्षरों का एक श्लोक, तो इतने 1634 अमुक अमुक कितने श्लोक हो गए, तो उसमें लिखा है 51,08,84,620 श्लोक एक पद में हो गए। यानी ऐसे आचारंग में कितने पद है, तो 18,000 है, तो उसमें श्लोक कितने हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय इतने से करो, 51 करोड़ से गुणा कर दो। ऐसे ऐसे वो सब हमने ये जो देखी थी ना बातें ज्ञान मार्गणा में, साढ़े 21 देखो 51,08,00,000 यानी 5108,00,000 नहीं 684,621 और 21.5 यानी आधा, यानी कैसे लिखना 5108,84,621 एक पद में श्लोक कितने हैं, ये पद में अक्षर तो हमने पहले देखे थे 1634 करोड़, और एक पद में श्लोक कितने हैं, तो 51,08,84,621 एंड आधा, आधा श्लोक है ने 16 अक्षर। वो क्या लिखा पहला, 5 करोड़ कहाँ है, 51 करोड़,
हाँ, वो क्या था?
ये है एक पद में श्लोक, एक पद में श्लोक कितने हैं, 51,08,84,621 यानी 5108,84,621 एंड हाफ, और एक पद में अक्षर, ये मध्यम पद की बात है। इस पद में हम अंग कितने पदों का है वो गिनते हैं। अभी जो हमने महाबंध के 40,000 श्लोक देखे वो श्लोक थे, 32 अक्षरों का एक श्लोक, ऐसे कितने हैं उसकी बात है। और ये हमारे 12 अंगों की रचना जो हुई है, पहला ही अंग जो है 18,000 पद का है, तो ये पद कौन सा है, एक एक पद में वो 1634 करोड़ वगैरह वगैरह इतने अक्षर है, और एक एक पद में श्लोक कितने पूछेंगे, तो ये 51,08,84,621 एंड हाफ। अब यही रुकेंगे हम, जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ।